नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर 12 मार्च तक बिजनेस खत्म होने के समय तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी नहीं दी, चुनाव आयोग को जानकारियां नहीं सौंपी, तो बैंक के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इतनी सख्त चेतावनी आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अपील की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। एक आखिरी दांव कि किसी तरह चंदे के धंधे में शामिल लोगों के नाम छिपा लिए जाएं, उन कंपनियों के नाम, उन शेल कंपनियों के नाम छिपा लिए जाएं, वो अब हाथ से निकल चुका है। कोशिश बहुत की गई कि उन कंपनियों के नाम सामने नहीं आए, उद्योगपतियों का चेहरा सामने नहीं आए, किसी तरह लोकसभा का चुनाव तक टल जाए, उसके बाद 400 सीटों की बहुमत के अहंकार में किसे क्या फर्क पड़ता है कि चंदा किसने दिया, चंदे का धंधा किसने किया। यह वो फैसला है जिसने 160 अरब के घोटाले से जुड़े लोगों से पर्दा उतार दिया है। बस नाम और चेहरा सामने आना बाकी है। कहां तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 136 दिन का समय मांग रहा था, उसे मिला 3 हफ्ते का समय, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक दिन में सारी जानकारी देनी होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास अब 12 मार्च के शाम 5 बजे या अधिक से अधिक देर शाम तक का समय है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और ध्यान से। रील्स देखने की आदत ने इस देश की संस्थाओं का रील्स बना दिया है, इसलिए पूरा देखने का धीरज विकसित कीजिए। यह चेयरमैन दिनेश कुमार खरा है, जिन्हें शायद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इतिहास में पहली बार सेवा विस्तार मिला। इससे पहले प्रबंध निदेशक के पद पर 2 साल का सेवा विस्तार मिला था। उन्होंने भारत के सबसे बड़े बैंक के साथ क्या किया? चीफ जस्टिस ने पूछ दिया कि SBI की याचिका पर असिस्टेंट जनरल मैनेजर का नाम क्यों है, जबकि ये एक गंभीर मामला है। इसके जवाब में वकील हरीश सालवे ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये काम उन्हीं का है। कहां तो चेयरमैन को आदेश के आते ही नेतृत्व संभालना चाहिए था, सबको लगाकर जानकारी जुटाने में लग जाना चाहिए था। यही वो शख्स हैं जो भारत के लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ी सबसे बड़ी जानकारी के लिए 136 दिन मांग रहा था। यही वो शख्स है जो 2.25 लाख से अधिक कर्मचारियों के स्टेट बैंक को तैयार नहीं कर सका कि लगो सब, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, 21 दिनों में ही पूरा करेंगे। इस शख्स ने अपने नेतृत्व का प्रदर्शन नहीं किया, इसे लीड करना चाहिए था। जैसे नोटबंदी का फैसला आते ही सारे बैंक नतमस्तक होकर चुपचाप जुट गए, एक ऐसा फैसला लागू करने के लिए जिसका आधार आज तक किसी को ठीक से नहीं पता। दिनेश कुमार खरा ने भारतीय जनमानस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी। इसका नाम ठीक से इतिहास में दर्ज होना चाहिए। इस मामले में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई कर रही थी। ऐतिहासिक फैसला देने वाली इस बेंच के सभी जजों का नाम भी याद रखा जाना चाहिए।
उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन को बोला है कि तुम इसका एफिडेविट फाइल करो कि तुमने ये अब आज का आदेश कंप्लाई किया कि नहीं किया। अभी हम कंटेम्प्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर बाद में भी नॉन कंप्लायंस हुआ तो हमको शायद लेना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा और बहुत कड़क फैसला, जो कि पिछला जो मेन जजमेंट था उसी के तहत आज कोर्ट ने दिया।
सो दिस जजमेंट आई थिंक विल गो अ लॉन्ग वे इन प्रोवाइडिंग ट्रांसपेरेंसी फॉर द पॉलिटिकल फंडिंग दैट इज बीइंग डन एंड द स्टॉपिंग द प्रोसेस ऑफ लीगलाइजिंग पॉलिटिकल करप्शन विच द BJP गवर्नमेंट हैड सॉट टू लीगलाइज थ्रू दीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स। सो our contempt petition has not been considered now. I'm sure it will be considered if the State Bank of India does not comply with the latest order. So overall, this is to the advantage of greater transparency in terms of political funding.
अदालत में आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी 200 साल की कमाई दांव पर लगाने चला गया। एक दलील नहीं टिकी। आज सुप्रीम कोर्ट में जो भी हुआ, स्टेट बैंक ने जो भी कहा, उसे आप स्कूल टीचर के सामने होमवर्क नहीं लाने वाले छात्र के रूपक से बेहतर समझ सकते हैं। हम अपने इस वीडियो में इस रूपक के सहारे आपको बताएंगे कि आज मास्टर के सामने होमवर्क नहीं करने का एक भी बहाना नहीं चल पाया। बच्चा परेशान था मगर मास्टर समझदार, या AI से बनाई गई तस्वीरें हैं, क्लासरूम का सीन है। छात्र होमवर्क लेकर नहीं आया है मगर लाया है 100 बहाने। छात्र ने कहा सर रात में बिजली नहीं थी, टीचर ने कहा घर में मोमबत्ती तो होगी, छात्र ने कहा मोमबत्ती नहीं थी, टीचर ने कहा पड़ोसी के घर जनरेटर नहीं था, छात्र ने कहा पड़ोसी शिमला गया था, ताला बंद था, टीचर ने कहा सूरज 6:30 बजे के बाद डूबा, स्कूल की छुट्टी 1 बजे हुई, 5 घंटे तक रोशनी थी। तब छात्र को नया बहाना सूझा, कहा ज्योमेट्री बॉक्स गुम गया, पेंसिल नहीं मिला, टीचर ने कहा ब्लिंकिट से पेंसिल मंगा सकते थे, मैगी मंगा सकते हो, होमवर्क के लिए पेंसिल नहीं। यही हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि देश के नंबर वन बैंक है ये, हम उससे बेहतर उम्मीद करते हैं कि वह हैंडल करे। हमें नहीं पता कि इन 26 दिनों में SBI ने क्या किया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पूछ दिया कि आपने 26 दिनों में क्या किया है, उसके बारे में हलफनामे में क्यों नहीं लिखा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वकील हरीश सालवे ने कहा कि हम अलग से हलफनामे में लिख देंगे। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले से क्यों नहीं लिखा है, हम स्टेट बैंक से पारदर्शिता और ईमानदारी की उम्मीद करते हैं। इसके लिए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अंग्रेजी में कैंडर शब्द का इस्तेमाल किया। इस एक शब्द में दोनों लक्षण आ जाते हैं, पारदर्शिता और ईमानदारी। कोर्ट ने कहा कि यह हालत हो गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने बताया है कि चंदा देने वालों की डिटेल मुंबई ब्रांच भेजे जाते हैं, जिन्हें चंदा मिलता है उनकी डिटेल भी मुंबई ब्रांच में है। हमने तो वैसे भी नहीं कहा कि मैच कराने की जरूरत है, हम केवल जानकारी चाहते हैं, तो आपको आदेश का पालन करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने कह दिया कि SBI ने अपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यानी वेबसाइट पर सवालों के जो तुरंत जवाब होते हैं उसमें कहा है कि बॉन्ड की हर खरीद के साथ अलग से KYC होगी। अगर KYC होगी तो आपको मालूम है किसने बॉन्ड खरीदा। मतलब इस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी साख गंवा दी, अपनी नाक कटा ली। भारत के स्कूलों में रोज यही होता है जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ। झूठ बोलने वाला छात्र हमेशा सीना फुलाए स्कूल आता है। बच्चे का सीना 56 इंच का तो नहीं होता मगर सीना सीना होता है, गाल गाल होता है। एक और रूपक है जिसका इस्तेमाल करना चाहता हूं। पूरे प्रसंग से उस यात्री की याद आ गई जो बिना टिकट लिए रिजर्व बोगी में चढ़ जाया करता था। सीट पाने के लिए यात्रियों के हाथ देखने लग जाता था, उन्हें तरह तरह से डराता था, दान करो, दक्षिणा दो और सीट दो वरना शनिचरा धर लेगा। मगर इस बोगी में सीट पर बैठे यात्री खेल समझ चुके थे, टिकट कटा कर बैठे थे, जान गए कि हाथ देखने वाला फर्जी ज्योतिष है। तभी हेड TT आ गया और उसने फर्जी बाबा को ट्रेन से उतार दिया। वैसे हाथ देखकर सीट पाने की घटना सही है और प्रधानमंत्री मोदी ने कही है।
मैं अपना बचपन का एक अनुभव बता दूं। मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था, भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में। तो मैं क्या करता था, देखता था कि यहां थोड़ा मौका है तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। आई आई बैठी।
आपको याद दिला दूं कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला असंवैधानिक घोषित हुआ उस दिन से आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले का स्वागत नहीं किया है, लेकिन 22 जनवरी को अयोध्या में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की लाज रख ली। मेरी नजर में यहां लाज का इस्तेमाल आपत्तिजनक है, मगर फिर भी प्रधानमंत्री ने कहा तो उसी तर्ज पर क्या आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की लाज नहीं रख ली? और जब लाज रख ली तो क्या प्रधानमंत्री कह पाएंगे ये बात कि कोर्ट ने भारत के लोकतंत्र की लाज रख ली?
मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना।
गजब का दिन रहा आज का। SBI जिस काम को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा था कोर्ट ने पकड़ लिया। हमने तो कहा ही नहीं, आप इतना समय क्यों मांग रहे हैं? चीफ जस्टिस ने साफ साफ कहा कि हमने आपसे नहीं कहा है कि आप मिलान करें, मैच कराएं, आपको केवल जानकारी देनी है खरीदार की और जिसने भुनाया उसके बीच मिलान नहीं करना है। तब एसबीआई ने कहा इतना सारा काम हमसे नहीं हो पाएगा, 3-4 महीने लगेंगे। तो कोर्ट ने यही कहा ठीक है, जितना कुछ है आप उतना दे दीजिए। फिर क्लासरूम और टीचर का वही प्रसंग याद आ गया, जैसे टीचर ने कहा ठीक है पूरा होमवर्क नहीं किया, जितना किया है उतना दिखाओ। फिर बच्चा कहता है सर कॉपी तो दोस्त के बैग में रह गई है, नई कॉपी खरीद नहीं सका क्योंकि बाजार बंद था। क्या हाल बना दिया है देश का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं ये स्टेट ऑफ इंडिया है, सबको समझ आ रहा था। बेंच ने कहा आपकी दलीलों से हमें यह समझ आ रहा है कि आपको इस जानकारी को देने में दिक्कत नहीं है कि किसने बॉन्ड खरीदा, कितने का खरीदा, और यह भी बताने में दिक्कत नहीं है कि किस पार्टी को कितने का बॉन्ड मिला। आप कह रहे हैं कि केवल इसकी मैचिंग की समस्या है, तो हमने ये बात कही नहीं। 26 दिनों में आपने 5,000-10,000 कुछ तो बॉन्ड का मिलान किया होगा। तब हरीश सालवे ने कहा कि हमने देखा है किस तरह से बैंक के लोग संघर्ष कर रहे थे, लगे हुए थे चार्ट बनाने में लेकिन चार्ट मैच नहीं कर रहा था। तब बेंच ने कहा कि इसमें क्या दिक्कत है, हर बॉन्ड पर एक गुप्त नंबर होता है जिसे अल्ट्रा वायलेट लाइट में देखा ही जा सकता है, यही तो करना था। तब सालवे ने कहा कि नंबर अलग जगह जमा है इसलिए 3 महीने चाहिए, मगर कोर्ट ने यह बात नहीं मानी। मतलब कोई तो दलील होती जो आज टिक जाती, नहीं टिकी। सालवे कहते रह गए कि हर फॉर्म को निकालना होगा, पेमेंट की डिटेल चेक करनी होगी, फिर बॉन्ड और बॉन्ड का नंबर, इन सबको मिलाना होगा। इस पर जस्टिस गवई कहते हैं कि हमने तो आपको बॉन्ड खरीदने वाले और चंदा लेने वाले राजनीतिक दलों के बीच मैच करने का काम ही नहीं दिया। तब सालवे ने कहा इस फैसले में सुझाया गया है। तब जस्टिस गवई कहते हैं कि सुझाव पर मत जाइए, जो आदेश में लिखा है उसका पालन कीजिए। हरीश सालवे पूरी कोशिश करते रहे कि किसी तरह कुछ दिन मिल जाए, पहले 136 दिन मांगते रहे, फिर 3 हफ्ते पर आ गए कि बिना सभी डेटा का मिलान किए हुए भी जानकारी देने में 3 हफ्ते का समय चाहिए। तब बेंच ने कहा कि किस बात के 3 हफ्ते, 1 दिन में दीजिए। बात खत्म हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। स्टेट बैंक की याचिका में ही पर्याप्त रूप से बताया गया है कि जानकारियां उपलब्ध हैं, इसलिए 30 जून तक समय मांगने का आवेदन रद्द कर दिया गया। तो जो जानकारी 15 मार्च तक आनी थी वो आएगी। 12 मार्च तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सारी जानकारी चुनाव आयोग को हवाले कर देनी होगी और चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर 15 मार्च तक डाल देगा। 15 मार्च शाम 5 बजे तक भारत के इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला और उससे जुड़ी हर जानकारी आपके सामने होगी। और अगर बैंक ने यह जानकारी आदेश के मुताबिक नहीं दी तो कोर्ट ने कहा है अवमानना की सजा मिलेगी। यह वो देश है, यही प्रधानमंत्री हैं जो कहते थे स्विस बैंक में काला धन जमा है, एक एक जानकारी सामने आएगी, लोगों के खाते में लाखों रुपए जाएंगे और उन्हीं की नाक के नीचे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुनावी फंड के काले धन को नहीं बताने के लिए कितना संघर्ष कर रहा था। एक मत है कि जो भी जानकारी आएगी उससे फ्रॉड का पता चलेगा, कंपनियों का भी और हो सकता है कागजी कंपनियों का भी, के पैसा देने के लिए फर्जी कंपनियां बनाई गईं, यह भी सामने आ सकता है। एक मत यह भी है कि जानकारियां बहुत जटिल हैं, इनका फ्रॉड सामने आने में, मिलान करने में काफी समय लग जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भी सूचनाएं देगा वो पत्रकारिता के लिए सबसे बड़ी चुनौती होने जा रही है। भारत की सड़ चुकी गोदी मीडिया की पत्रकारिता इस चुनौती को कभी स्वीकार नहीं करेगी। रिपोर्टर्स कलेक्टिव, न्यूज मिनट, स्क्रोल और द वायर के चंद पत्रकार कम संसाधनों में भी इसकी रिपोर्टिंग करेंगे ही, मगर उनकी खबरों को भी देश की जनता तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। एडीआर कॉमन कॉज ने इस याचिका पर कितना काम किया, उनकी वजह से आज यह संभव हुआ। सीपीएम ने भी याचिका दायर की और कांग्रेस की नेता जया ठाकुर ने भी। आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश बत्रा का नाम तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, असली भारत रत्न लोकेश बत्रा ही हैं। कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, शादान फरासत, निजाम पाशा, विजय हंसारिया जैसे वकीलों ने बहस की, इनका नाम भी लिया जाना चाहिए। इन सभी की वजह से भारत के लोकतंत्र का काला सच सामने आया है, मगर उसे बताने वाला मीडिया पर्दे के पीछे छिप रहा है। जो काम स्टेट बैंक नहीं कर सका वह काम गोदी मीडिया अब कर देगा। इस पूरे मामले पर चुप हो जाएगा। चैनलों पर फर्जी सर्वे के जरिए 400 सीटों की जीत का कवरेज बढ़ा दिया जाएगा ताकि जनता भूल जाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर क्या हुआ था, क्या जानकारी आनी थी, जो आनी थी वो नहीं आई। फिर भी सुप्रीम कोर्ट में आज जिस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दलीलें ध्वस्त हुई हैं उससे साफ है कि इस जानकारी को छिपाने के लिए कितना प्रयास किया गया, कितने लोग डरे होंगे। बेशर्मी की सारी सीमाएं पार कर ली गईं। डांट पड़ेगी, डांट पड़ जाए, मगर किसी तरह 15 मार्च की डेडलाइन टल जाए। सबने देखा कि इलेक्टोरल फंड के फ्रॉड को सामने लाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेल हो गए। चुनाव के समय देवी देवताओं की आराधना वाली उनकी तस्वीरों को सामने रखकर मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने इस मामले में शुचिता और पारदर्शिता के प्रति अपनी जवाबदेही और ईमानदारी का प्रदर्शन क्यों नहीं किया? क्या इन देवी देवताओं के सामने आंखें बंद करते ही उन्हें याद आता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का झूठ संविधान के प्रति किया गया पाप है या धर्म के प्रति किया गया अपराध? क्या वे प्रायश्चित कर रहे हैं? देवी देवताओं से ही शक्ति मांगेंगे कि इसका सच बाहर लाने की शक्ति उन्हें मिले, या फिर गोदी मीडिया के उन सैकड़ों संपादकों, उनके मालिकों, पत्रकारों के भीतर अपने पेशे का धर्म जगा दे जो पत्रकारिता का धर्म भूल चुके हैं? प्रधानमंत्री तमाम देवी देवताओं से आग्रह करें कि अगर मैं इस काम में असमर्थ हूं तो इन पत्रकारों को समर्थ बना दें ताकि वे जानकारी पहले पन्ने पर छापकर देश की जनता को बता दें। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार की चुप्पी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इधर उधर करना बता रहा है कि कितना कुछ छिपाया जा रहा है। या वो याचिका थी जो सुप्रीम कोर्ट का भी इम्तहान ले रही थी? कितनी बातें होने लगी कि क्या कोर्ट राहत देगा, क्या चुनाव से पहले चंदे के पीछे का धंधा कभी सामने आएगा? आज सुप्रीम कोर्ट ने उन सारी अटकलों और अफवाहों को खत्म कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अपील को खारिज कर दिया और रिजेक्ट हो गए वे सारे झूठ जिसे ईडी और गोदी मीडिया के दम पर सरकार और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने सीने पर लगाकर घूम रहे थे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।